ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम सैवाय अभ्यंतर शुचि ही। अभी आरंभ में जैसे हमेशा करते हैं उत्सव पर करन्यास और हृदयादि न्यास। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अत करन्यास है। ओम अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंद है। श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजम सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रजेति शक्ति अहम त्वा सर्पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शोचेति कीलकं नयनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकेति अंगुष्ठाभ्यां नमः न चैनम क्लेदियंति आपो न शोषति मारुते इति तजनिभ्यां नमः अछेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो अशोषेव च इति मध्यमाभ्यां नमः नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन इति अनामिकाभ्यां नमः पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशो सहस्रश इति कनिष्ठकाभ्यां नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतल करप्रस्थाभ्यां नमः इति करन्यास है। अथ हृदयादि न्यास है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक इति हृदयाय नमः न चैनम क्लेदियन्ति आपो न शोषति मारुत इति शिरसे स्वाहा अछेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो अशोष्येव च इति शिखायै वशत् नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन इति कवचाय हुम पश्चिमे पात्र रूपाणि शतशो अशस्त्रश इति नेत्रयाय वोषट नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गतिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतम मतवर्षिणीम भगवतीम अष्टादश अध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रबन्ध पारिजाताय तोत्र वेत्रेकबाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तटा चला गांधा नीलोत्पला शल्यग्रहावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विक्रम कर्णोद मकरा दुर्योधन आवर्तनी सोत्तीर्णा खलु पांडवे नन्नदी कैवर्तक केशव पाराशर्य वच सरोजमलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केशनम हरिकथा संबोधन बोधितम लोके सज्जन षट्पदय है पीपीयमानं मुदा भूयात भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। अद गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान विष्णो पदं अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूजन कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मनिसृता भारतं मत्सर्वस्वं विष्णो वक्त्रादिविनश्रितं गंगा पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि नर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अब जैसे हर वर्ष भगवान की कृपा से ये अनुष्ठान हम करते हैं उसी प्रकार आरंभ करेंगे। एक दो बातें प्रारंभ में जो मन में आ रही हैं भगवान दे रहे हैं प्रारंभ करने से पहले। पहले भी ये बात कभी मैंने कही होगी, आज फिर मन में आ रही है कहने की। कि संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना इस भूमंडल पर अब तक ज्ञात इतिहास में क्या घटी है, जितना ज्ञात इतिहास है, जो भी ज्ञात इतिहास है मनुष्य जाति का, उस पूरे मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में जितनी भी अनेक प्रकार की अनंत घटनाएं घटी हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या घटी है, तो मेरा अपना विचार ये है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना समस्त मानव जाति के इतिहास में लगभग 5,235 वर्ष पूर्व आज के दिन घटी थी, जब इस भूमंडल पर ये श्रीमद् भगवद् गीता के अलौकिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है समस्त मानव जाति के इतिहास में। प्रश्न उठता है, ऐसी बात आपने कैसे कही? बहुत सीधा उत्तर है, जितना मालूम है उसके अनुसार जितने भी भाषाएं हैं, सब में जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, किसी भी ग्रंथ और शास्त्र में जितनी अपनी जानकारी है उसके अनुसार मनुष्य के जीवन का क्या प्रयोजन है, यह बात जितनी स्पष्टता से इस ग्रंथ में बताई है इतनी और कहीं नहीं बताई। मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, इस भूमंडल पर जन्म मनुष्य का क्यों होता है, ये बात इस ग्रंथ में जिस प्रकार बताई है ऐसी सारे संसार के सारे साहित्य में और कहीं है नहीं। और केवल यही बात नहीं बताई कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य क्या है, बल्कि यह भी बतलाया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, यह भी इसमें बता रखा है। ये जीवन का उद्देश्य है और इस प्रकार से ये प्राप्ति होती है, ये बात यहां इसके अलावा और कहीं बताई नहीं है। और ये जो दूसरी घटनाओं के बारे में इतिहासकार कहते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, ये तो मनुष्य के विद्रूपता की घटनाएं हैं, इनमें कौन से प्रशंसा की बात है। वो उस राजा ने फिर चढ़ाई की, इतने साल राज्य किया, अरे हाँ हाँ, कीड़े मकोड़े ऐसे ही करते रहते हैं संसार में, इसमें कोई विशेष बात नहीं है भाई। ये आवेश में, आक्रमण में, लोभ में आकर के चढ़ाइयां करना और फिर उसमें वैभव में डूबे रहना, ये तो होता ही है जानवरों के जीवन का प्रयोजन। अरे मानव कैसे दिव्यता को प्राप्त करे, कैसे भगवत्ता को प्राप्त करे, ये तो यहां बताया हुआ है। तो आज के दिन लगभग 5,235 वर्ष पूर्व यह जो घटना घटी कुरुक्षेत्र के मैदान में, मेरे अपने विचार से, दुनिया का कोई व्यक्ति सहमत इस बात से हो या न हो, हमारे अपने विचार से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है मनुष्य जाति को प्रकाश देने के लिए। और इस प्रकार से मेरे विचार से वो परम सौभाग्यशाली मानव हैं जो इस ग्रंथ को लेकर के अपने जीवन का मार्ग तय करते हैं और उस पर चलते हैं और फिर भगवत प्राप्ति के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं। उसी क्रम में आज के दिन आध्यात्मिक जगत में ये महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इसको मनाते हैं और ये मनाया जा रहा है, तो जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं वो भी असाधारण सौभाग्यशाली हैं। अब थोड़ा सा, चूंकि कई लोग हो गए हैं 7-8 विदेश से, थोड़ा सा बहुत शुरू में मैं ब्रीफ में अंग्रेजी में थोड़ा बता देता हूँ। फॉर द फ्रेंड्स फ्रॉम एब्रॉड, सम वट एवर आई हैव सेड सो फार, आई वुड लाइक टू से समथिंग इन इंग्लिश फॉर देम। if a question is raised as to is there any some one extraordinary event, most important event in the whole history of humanity, then according to my mind I would say that yes, the greatest event in the whole history of humanity happened about 5,235 years ago on this day, when this great sermon was given at the battlefield by the Lord Himself. A question then may be asked, how do you say it as the greatest event in the whole history of humanity? My answer is, those things are great and greater and greatest which show humanity the path of correct life. And here it is in this book that most clearly it has been explained as to what is the only aim of human life, God realization. And not only this has been said, but this has also been explained how that aim is attained. And the theory is given, and the technology, the practical aspect is also given. It is for this reason that at the end of every chapter in the Pushpika, it has been mentioned, Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu, Yoga Shastri word is also there. Yoga Shastri means the method, how that can be achieved. So, to my limited knowledge, nowhere else so clearly there is found any exposition about the aim of human life and also how that aim can be achieved. Therefore, I would say it is the greatest event in the whole history of humanity. Other events like World War I, II or all those things, I don't consider the greatest. They are nothing but the idiosyncrasies of human mind. What great thing has happened if somebody has attacked a country and conquered a territory? Nothing. An effort to satisfy egoistic desires of human mind. The real value lies in the effort to make life divine, sublime, full of love and sacrifice. So it is for this reason that I consider this day the greatest event in the whole history of humanity, and those people are definitely fortunate who try to follow the path given in this book, and those who are participating today in this function, not only here but at so many places throughout the country, maybe even abroad at many places, they are, to my mind, very lucky people. My blessings to all for all that. Now we will start the whole of Gita. Ab isme jaisa ki hum karte hi hain, aaj ke din puri Gita Hindi mein padhenge. Adhyay ke aarambh mein jo hum log karte hain, samput lagate hain, Vasudev Sutam Devam, usse aarambh karenge. थोड़ा सा पांच श्लोक मैं आरंभ कर देता हूँ. सुदेव सुतम देव कंस जानु मर्दनम देव की परमानंदा कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय धृतराष्ट्रवाच. थोड़ा श्लोक भी पढ़ देता हूँ थोड़े से. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्व संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। संजय वाच, संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, उनमें युधान सात्यकी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं, ये सब के सब महारथी हैं। ओम।